आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्लास 10th के साइंस का 16th चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। हम लोगों को जरूरत ही क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर जितनी भी सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए या फिर वाटर रिसोर्सेज हो गए या फिर सॉइल हो गया या फिर फॉरेस्ट हो गए, इन सभी रिसोर्सेज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इसे यूज करते जाएंगे और ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। इनका अनलिमिटेड स्टॉक हमारी धरती पर मौजूद नहीं है, लिमिटेड स्टॉक मौजूद है। अगर हम बगैर कुछ सोचे समझे इन सभी चीजों को यूज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, धरती पर ये मौजूद ही नहीं होंगी। तो उससे ऐसा होगा कि आपके आने वाली जनरेशन के पास इन चीजों को यूज करने का मौका नहीं होगा और वो इन सभी चीजों को यूज करके कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके, आने वाली जनरेशंस की नीड को ध्यान में रख करके, रिसोर्सेज को मैनेज करके, रिसोर्सेज के जो यूज है उसको मैनेज करके ही हमें चीजें यूज करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम ऐसे यूज करते हैं, मैनेज बगैर किए यूज करते हैं, तो जैसे ही रिसोर्सेज की अमाउंट कम हो जाएगी तो वैसे ही रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा अवेलेबल रिच और पावरफुल लोगों के लिए हो जाएंगी और जो पुअर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा। तो इसीलिए हमें जब भी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही यूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बगैर किसी मैनेजमेंट लॉज को फॉलो किए अगर आप यूज करते हैं रिसोर्सेज को, तो उससे आप नेचर को भी डैमेज पहुंचाते हैं। इसका एग्जांपल है कि अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, आप कोयला निकालना चाहते हैं जमीन में खुदाई करके, तो उस वक्त आप बगैर कुछ सोचे समझे सिर्फ खुदाई करके कोयला प्राप्त कर लेंगे तो उससे आपके नेचर को नुकसान पहुंचता है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माइनिंग करने के बाद आपको जो चीज चाहिए थी अगर आपको मिल गई तो उसके बाद आपको वापस से जहां से आपने खुदाई की है उस जगह को अपने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी वेस्ट वहां पर जनरेट हुआ है उसको वापस से किसी तरीके से डिकम्पोज करने की कोशिश कीजिए और प्रॉपर सेफ डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट मटेरियल्स का भी। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमें वेस्ट जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारी कंट्री में हमेशा से ही लोगों में ये भावना रहती है कि प्रकृति की रक्षा करनी है, प्रकृति की पूजा करनी है। हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, काफी सारे ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारे देश के लोगों में हमेशा से ही प्रकृति के प्रति बहुत सम्मान रहा था। हमारे देश में कई कई इलाकों में सैकर्ड ग्रूव्स बनी हैं, यानी कि ऐसे इलाके बने हैं जहां पर जीव जंतु बगैर किसी डर भय के आराम से रह सकते हैं, उन्हें वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय वहां पर उन जीव जंतुओं की उस जगह की पूजा भी की जाती है जिन्हें सैकर्ड ग्रूव्स कहते हैं या फिर सैकर्ड फॉरेस्ट कहते हैं या फिर सैकर्ड कॉरिडोर्स कहते हैं। तो काफी सारे शहरों में जैसे कि मेघालय हो गया या फिर राजस्थान हो गया, यहाँ पर अलग अलग ऐसी एक जगह बनाई गई है जहाँ पर जीव जंतु बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के आसानी से रह सकते हैं और उन्हें कोई वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये सारे रिचुअल्स, ये सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं हमारे देश के अलग अलग जगहों पर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने बात की थी कि फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो जीव जंतु है उसमें डाइवर्सिटी बहुत देखी जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं किसी भी फॉरेस्ट के अंदर, और एक फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के लिए घर होता है। तो हम इसीलिए फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं के घर की तरह काम करने के अलावा फॉरेस्ट से बाकी लोगों को भी, हम इंसानों को भी अलग अलग प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि जो फर्नीचर आप यूज करते हैं उसके लिए वुड जो होता है वो फॉरेस्ट से ही आता है, जो पेपर आप यूज करते हैं उसके लिए फॉरेस्ट से ही लकड़ियां आती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारा फायदा जो लोग हैं वो उठाते हैं फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो इसीलिए फॉरेस्ट हर किसी के लिए फायदेमंद है। तो अगर फायदा लोग उठा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी हर किसी की है, जितने भी लोग फॉरेस्ट से चीजों को यूज करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फॉरेस्ट की रक्षा वो करें। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टेक होल्डर्स, यानी कि किन किन व्यक्तियों के ऊपर फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अब हम आज की क्लास में इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा उन लोगों के बारे में जो या तो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। तो ऐसे लोकल लोग जो हैं, लोकल ग्रुप्स या फिर लोकल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रह रही हैं, इनको क्या क्या फायदा पहुंचता है फॉरेस्ट से। इन लोगों को जो फायरवुड, लकड़ियां खाना बनाने के लिए या फिर अपने घर में गर्मी के टाइम पर, ठंडी के टाइम पर गर्माहट करने के लिए, तो ये व्यक्ति जो फायरवुड होता है वो फॉरेस्ट से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा टिम्बर या फिर जो थाच होता है ये सारा भी ये फॉरेस्ट से ही प्राप्त करते हैं। बैम्बू ट्रीज से बैम्बू प्राप्त करते हैं और उससे ये लोग टोकरियां बनाते हैं या फिर बास्केट्स बनाते हैं या फिर हट्स बनाते हैं या फिर जो कई कई तो घर भी बनते हैं बैम्बू से। तो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो घर भी बनाते हैं बैम्बू का यूज करके। तो यहाँ पर बैम्बू का यूज करके लोग घर भी बना सकते हैं, तो बैम्बू का इस रूप में भी यूज करते हैं। यानी कि फॉरेस्ट के एक और तरीका मिल गया जहाँ से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का यूज किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो फॉरेस्ट से फल फूल जो मिल रहे हैं उसको भी यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। मेडिसिन मिलती हैं जो बहुत पुराने जमाने से ही नेचुरल मेडिसिन लोग यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन का सोर्स भी फॉरेस्ट ही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में अलग अलग जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनको बनाने के लिए भी फॉरेस्ट से ही ये लोग लकड़ियां यूज करते हैं, और कई बारी फॉरेस्ट के अंदर एग्रीकल्चर का यूज भी करते हैं, एग्रीकल्चर ही कर देते हैं फॉरेस्ट के अंदर। कुछ एरिया जो होता है वहां पर अपने अपने फायदे की चीजें उगा करके एग्रीकल्चर भी लोग करते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। फिशिंग भी करते हैं कुछ लोग, अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई पॉन्ड है, लेक है, तो वहां पर फिशिंग भी करते हैं। छोटे मोटे जीव जंतुओं की हंटिंग भी करते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं आसपास फॉरेस्ट के जो रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो ये अपने एनिमल्स को, कैटल को ग्रेजिंग करने के लिए भी फॉरेस्ट में लेकर के जाते हैं, और जो फूड है या फिर फॉडर है, चारा वगैरह जो है, अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह भी ये फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा बेनिफिट जो है लोगों को मिलता है जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई चीज इतनी ज्यादा फायदा कहीं पर से उठाते हैं तो नेचुरली आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस जगह की रक्षा भी करें। तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग या तो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, अगर ये लोग इतनी ज्यादा बेनिफिट्स फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भी है कि फॉरेस्ट की ये रक्षा करें। तो पहले व्यक्ति तो ये हो गए, पहले स्टेक होल्डर्स वो लोग हो गए जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं। अब दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन थे? दूसरे स्टेक होल्डर्स हमने पढ़े थे अबाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी रखनी है कि लोग जो रहते हैं, ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे, ब्रिटिश के आने के पहले लोग फ्रीली फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, कोई उन पे जोर जबरदस्ती किसी चीज के बारे में नहीं थी कि वो फॉरेस्ट को खाली करें या फिर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को ना यूज करें। तो जैसे ही ब्रिटिश आ गए हमारे देश में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जो फॉरेस्ट की रखवाली करते, बेसिकली रखवाली नहीं, जो भी प्रोड्यूस आता था फॉरेस्ट से, जो भी फायदे की चीजें आती थी, वो सारी चीजें ब्रिटिश अपने कब्जे में करना चाहते थे, वो सारी चीजें ब्रिटिश यूज करना चाहते थे और उससे फायदा उठाना चाहते थे, इकोनॉमिक फायदा, पैसा निकालना चाहते थे हर एक चीज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट से बैम्बू मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहे हैं, फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं या फिर इतनी सारी चीजें हैं, तो इन सबको बेचा जा सकता है। इसीलिए ब्रिटिश ने फॉरेस्ट के ऊपर भी अपना कब्जा जमा लिया, और यही कब्जा जमाते जमाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली क्या थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश जो लोग थे, हाई कमांड जो थे, उनके उनके ऑफिशियल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, और जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता था, जो भी चीजें फॉरेस्ट से आती थी, वो सारी की सारी लोकल लोगों को ना मिल करके ब्रिटिश कंपनी को मिलती थी। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट हमारे देश में आ गई थी, जिन्होंने हमारे देश पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया था, उनको ये सारी चीजें मिलती थी। इससे क्या हुआ कि लोकल लोग जो थे उनका जितना भी कंट्रोल था थोड़ा बहुत हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, वो सारी की सारी खत्म हो गई, उनकी जरूरतें पूरी होनी बंद हो गई और उनको बहुत दिक्कत होने लगी। यहाँ पर क्या क्या ब्रिटिश ने लोकल लोगों को बहुत छोटा एरिया दे दिया, फॉरेस्ट का बहुत छोटा एरिया दे दिया, और फिर जितने भी सारे लोकल लोग थे उनको अब छोटे एरिया में ही काम चलाना पड़ रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि उस छोटे एरिया का उन लोकल लोगों ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। अब आप सोचो कि पहले के टाइम पर जो लोग सारे रहते थे वो पूरे फॉरेस्ट पर उनका कब्जा था, पूरे फॉरेस्ट में से वो चीजों को यूज कर सकते थे। लेकिन बाद में उन्हीं लोकल लोगों को अगर छोटे से एरिया में सीमित कर देंगे तो अब ज्यादा लोग हो जाएंगे और जगह कम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा और अब हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचने लगा। जो ब्रिटिश कंपनी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था फॉरेस्ट की रखवाली करने में। इनको सिर्फ फॉरेस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम लगता था। यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जब लोकल कम्युनिटीज रहती थी तो वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगाती थी, जैसे जैसे उनको जरूरत होती थी तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगाती थी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, अगर उन लोगों को मान लो पाइन चाहिए तो क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट के अंदर उनको सबको कटवा दिया और सारी की सारी एरिया में सिर्फ पाइन की खेती कर दी, या फिर केवल टीक की खेती कर दी, या फिर केवल यूकेलिप्टस की खेती कर दी। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे और उससे बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान हुआ। जितनी भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो थे वो अलग अलग पेड़ पौधों पर फीड करते थे, लेकिन अगर आप एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगाने लगोगे तो सिर्फ एक ही टाइप का स्पीशी जो है वो फ्लरिश करेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की वेजिटेशन पर प्रभाव डालने से वहाँ की स्पीशीज जो थी उसकी डाइवर्सिटीज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा, और लोकल पीपल जो थे ना उनको अब फॉडर मिल पाता था, ना उनको कोई दवाइयां मिल पाती थी, ना हर्ब्स, ना मेडिसिंस, ना फ्रूट्स, ना उनको कोई फ्लावर्स, ना फूड, कुछ नहीं मिल पाता था। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके सारा का सारा फॉरेस्ट का कंट्रोल ब्रिटिश डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद में इंडस्ट्रीज को मिलने लगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा देती थी वहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ उगाने के लिए। जैसे कि मान लो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करना है तो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए टीक वुड चाहिए होता है। टीक वुड चाहिए तो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा देंगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर डाइवर्सिटी है, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं किसी फॉरेस्ट में, तो वो सारा वो क्लियर करा देंगे, सारा कट करा देंगे और वहां पर केवल और केवल टीक वुड प्लांट करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी में लॉस हो जाएगा, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी जितनी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है उतना ज्यादा हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरमेंट को फायदा होता है, और अगर आप डाइवर्सिटी कम कर देंगे तो इकोसिस्टम को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का वेजिटेशन करने से स्पीशीज डाइवर्सिटी घटने लगी और इकोसिस्टम को नुकसान होने लगा, और धीरे धीरे करके फॉरेस्ट जो जीव जंतुओं के लिए हुआ करता था अब वो केवल इंडस्ट्रीज के लिए काम करने लग गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप सोचेंगे कि पहले भी पेड़ पौधे उगाए जाते थे, अभी भी पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर कोई फैक्ट्रीज या कोई इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट को यूज कर रही है तो वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में यूज कर रही है। जो भी उन लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उस फॉरेस्ट से, वो सिर्फ उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं। उनको ये ख्याल नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को कि उनको फॉरेस्ट की रक्षा करनी है, और उनको ये ख्याल नहीं होता कि अगर किसी फॉरेस्ट का यूज उन्होंने किया है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि उस फॉरेस्ट को वो बनाए रखें ताकि वो फ्यूचर में भी उसे यूज कर पाए। वो ये सोचते हैं कि अगर एक फॉरेस्ट के अंदर से हमने सारी लकड़ियां यूज कर ली हैं तो जैसे ही खत्म हो जाएंगी सारी लकड़ियां तो हम दूसरे फॉरेस्ट से पैसा ले लेंगे, दूसरे फॉरेस्ट को पैसा दे देंगे और वहां पर लकड़ियां उगवा करके फिर वहां से ले लेंगे। लेकिन अगर कोई लोकल लोग रह रहे हैं तो क्योंकि उन्हें वहां रहना है तो उनका अप्रोच डिफरेंट होता है, फॉरेस्ट के लिए उनकी सोच अलग होती है। लोकल लोग ये सोचते हैं कि उनको वहीं रहना है तो वो फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर वो कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से यूज करते हैं कि उनके जीव जंतुओं को, आसपास जो जीव जंतु रह रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो तो उनका घर है। फॉरेस्ट उन लोगों का, उन लोकल पीपल का घर है, उनको वहां से खाना मिल रहा है, घर बनाने की लकड़ी मिल रही है, बैम्बू मिल रही है, अपने जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको चारा खिलाने के लिए उनको फॉरेस्ट से मिल रहा है। तो जब लोकल पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनकी सोच ऐसी रहती है कि वो फॉरेस्ट को यूज करते हैं उसके प्रोडक्ट्स को, लेकिन साथ में कंजर्व भी करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं सोचते हैं। इसी पर बेस्ड यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी 16.7 दी गई है पेज नंबर 272 पर। इसमें बोला है, फाइंड आउट अबाउट एनी टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट आर द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्री, डिस्कस वेदर दिस इंडस्ट्री इज सस्टेनेबल इन अ लॉन्ग रन, और डू वी नीड टू कंट्रोल आवर कंजम्पशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर इंडस्ट्रीज की, तो पेपर इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वुड चाहिए होता है, उसको यूज करके ही पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक ये इंडस्ट्रीज काम करती रहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर इन्हें लकड़ियां चाहिए तो इसके लिए ये फॉरेस्ट की सारी लकड़ियां कट करा देंगे और सारी की सारी लकड़ियां यूज कर लेंगे तो फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो तो इसके लिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत समझदारी से पेपर का यूज करना चाहिए। दूसरा यूज यहाँ पर हो सकता है अबाउट तेंदू लीव्स, जो बीड़ी वगैरह लोग पीते हैं तो इस बीड़ी को बनाने के लिए तेंदू लीव्स यूज की जाती हैं। ज्यादा बीड़ी लोग पिएंगे तो ज्यादा लीव्स यूज होंगी, अगर ज्यादा लीव्स यूज की जाएंगी बीड़ी बनाने के लिए तो उससे केवल तेंदू लीव्स ही ग्रो की जाएंगी, तेंदू के प्लांट्स ही ग्रो किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ही प्रकार के प्लांट्स ग्रो करने से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो स्मोकिंग करने से आप बायोडाइवर्सिटी का लॉस करा रहे हैं, दूसरा पॉल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, तो स्मोकिंग लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो लोकल लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो एक स्टेक होल्डर्स है, उनके बारे में हमने देख लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में देख लिया, इंडस्ट्रीज के बारे में देख लिया। अब लास्ट बच गए जो बायोडाइवर्सिटी एंथुसियास्ट होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट होते हैं। वो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी एंथुसियास्ट बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो फॉरेस्ट की रक्षा करना चाहते हैं। यहाँ पर इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है फॉरेस्ट की रक्षा करने से, या फिर इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है जो ये फॉरेस्ट से डिराइव कर रहे हो और इसलिए ये रक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए रक्षा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की या फिर फॉरेस्ट की, क्योंकि ये जानते हैं कि फॉरेस्ट से अगर डायरेक्टली हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट हो रहा है। हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जो कि फॉरेस्ट एक लार्ज अमाउंट में क्रिएट करता है और पॉल्यूशन को घटाता है। तो फॉरेस्ट से अगर हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट होता है। और इसी बात को समझने के बाद कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के जो ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि वो फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे, फॉरेस्ट के अंदर जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से हमने कई सारे एग्जाम्पल्स अपने पास्ट में भी देखे हैं, हिस्ट्री में भी देखे हैं, जो हमारे भारत में मिलते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अबाउट बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये राजस्थान में पाई जाती है, वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट के बॉर्डर पर पाई जाती है। ये एक लोगों की कम्युनिटी है जो इस बात से जानी जाती है कि वो एनवायरमेंट से बहुत प्यार करते हैं, नेचर से बहुत प्यार करते हैं, फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से, इन सभी की बहुत ज्यादा ही पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो बिश्नोई कम्युनिटी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, और बहुत सालों से, कई कई सालों से इनके बारे में देखा जाता है कि इतने ज्यादा ये नेचर के लिए अपने मन में श्रद्धा रखते हैं कि अपने जीवन को सेक्रीफाइस करने तक की इनमें श्रद्धा है। कि एक इंसिडेंट ऐसा देखा गया था 1731 में कि बिश्नोई कम्युनिटी जहां रहती थी उधर के राजा ने कहा था कि उसको एक पैलेस बनवाना है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो वो लकड़ी जो है वहां के पेड़ पौधों से काटने के बाद मिल जाती। वहां पर एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का ट्री पाया जाता है बिश्नोई कम्युनिटी जहां रहती है वहां पर, खेजरी ट्री। ये खेजरी ट्री का वुड राजा चाहते थे कि वो यूज करें अपने पैलेस को बनवाने के लिए। तो उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया और कहा कि जाके सारे के सारे खेजरी ट्री को काट के ले आओ, वुड को यूज करके पैलेस बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा के लोग पहुंचे खेजरी ट्री को काटने के लिए, तभी वहां पर जो ये बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने कहा कि हम आपको लकड़ी नहीं काटने देंगे, हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। अगर आपको पेड़ काटना है तो उसके पहले आप हमें मार दो, हमें मारने के बाद ही आप पेड़ को काटो। राजा के लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस चक्कर में जो भी बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनमें से जो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, यानी कि जिस महिला ने सबसे पहले कहा था कि राजा के लोगों को कि तुम पहले हमें मार दो और उसके बाद ही तुम पेड़ लेकर के जाना, वो महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर आपको पेड़ चाहिए, खेजरी ट्री के लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें खत्म करने के बाद ही आपको खेजरी ट्री के जो वुड है वो मिलेगी, इसके पहले नहीं मिलेगी। तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ और भी कई लोग, करीब 363 लोग, इन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और राजा के जो लोग थे इन्होंने पहले अमृता देवी बिश्नोई और बाकी सारे लोगों को मार डाला, उनकी हत्या कर डाली, और उसके बाद वो खेजरी ट्री को लेके गए। यहाँ पर भले ही अमृता देवी बिश्नोई जो चाहती थी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हमें अपने एनवायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पेड़ है तो उसकी लाइफ हमारी लाइफ से किसी तरीके से कम है। पेड़ पौधों की भी लाइफ हमारी धरती पर धरती को बनाए रखने में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी लाइफ है। तो इसीलिए हमें अपने प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने कहा कि हम एक अवार्ड देंगे, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये अवार्ड उन रूरल एरियाज में लोगों को या फिर ग्रुप्स को दिया जाएगा जो किसी न किसी तरीके से वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं। और ये जो खेजरी ट्री है ये खेजरली गांव में मिलता है जोधपुर राजस्थान के पास में, जिसकी पिक्चर आप लोगों को दी गई है यहाँ पर पेज नंबर 273 फिगर 16.3 खेजरी ट्री का डायग्राम आपको दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों का ये सोचना कि कोई भी लोग जो रह रहे हैं, अगर वो ग्रेजिंग करा रहे हैं अपने कैटल्स को लेकर के, चारा अगर वो प्राप्त कर रहे हैं किसी फॉरेस्ट में से, तो वो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सोच गलत है। ये प्रूव होती है एक एग्जाम्पल से। देखा गया था कि हिमालय के अंदर एक नेशनल पार्क है, हिमालयन नेशनल पार्क। वहां पर उस नेशनल पार्क को बनाने के पहले जो लोग वहां पर रहते थे, चरवाहे जो रहते थे, वो अपने शीप्स को लेकर के जाते थे और ग्रेजिंग कराते थे, यानी कि जो चारा था वो उस फॉरेस्ट से डिराइव करते थे। लेकिन बाद में जब हिमालयन नेशनल पार्क वहां पर बन गया तो इन चरवाहों को मना कर दिया गया। अब ये चरवाहे अपने शीप्स को लेकर के नहीं जा पाते थे और चारा फॉरेस्ट से इन्हें नहीं मिलता था। इससे क्या देखा गया, इससे ये देखा गया कि हिमालयन नेशनल पार्क जो है यहाँ पर अल्पाइन मीडोज हैं, मतलब कि यहाँ पर घास उग जाती है समर के टाइम पर, यहाँ पर अच्छी खासी घास उग जाती है। अब ये घास अगर चरवाहों के शीप्स जो हैं, अगर ये शीप्स उन घास को नहीं खाते तो ये घास उगती है, लंबी हो जाती है और वापस से ये लुढ़क जाती है। इससे क्या होता है कि लुढ़क गई लेकिन वो टूटी नहीं है अभी, तो वापस से ग्रोथ नहीं हो पाती है ग्रास की, तो इट प्रिवेंट्स फ्रेश ग्रोथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि जो लोकल लोग हैं अगर वो अपने चरवाहे अपने कैटल्स को, अपने एनिमल्स को लेकर के जाएंगे और चारा प्राप्त करेंगे फ्रॉम फॉरेस्ट, तो उससे हमारे फॉरेस्ट को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ हमें रिवर्स देखने को मिल रहा है कि अगर जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, अगर वो चारा नहीं प्राप्त कर रहे हैं फॉरेस्ट से, तो उससे फ्रेश ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है ग्रास की। तो हम लोगों को बेसिकली एक बीच का मेथड अपनाना होता है, जहां पर लोकल लोगों को भी फॉरेस्ट से जो चीजें उन्हें चाहिए वो मिलती रहे और साथ में कोई डैमेज भी ना हो पाए फॉरेस्ट को। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें एक लिमिट तय कर दी जाए, जिसमें लोगों को बता दिया जाए कि आप इतने लिमिट तक ही चारा प्राप्त कर सकते हैं फॉरेस्ट से, इसके बाद अगर आप चारा प्राप्त करेंगे तो फॉरेस्ट को नुकसान होगा। क्योंकि फॉरेस्ट को नुकसान सिर्फ लोकल पीपल के द्वारा नहीं होता है, वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, जो चीजें यूज करते हैं वहां पर वो लिटर वगैरह फेंक देते हैं, वेस्ट फेंक देते हैं, तो उससे भी डैमेज होता है। या फिर जो चीजें बना दी जाती हैं, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर ही लोगों के लिए, ताकि टूरिस्ट वहां आए और अपना विजिट एंजॉय करें, तो इससे भी नुकसान होता है। सिर्फ ऐसा कहना कि लोकल पीपल ही फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि कई सालों से जो प्रैक्टिस चली आ रही है, लोकल लोग अपनी जो जरूरतें हैं उसको जंगल से पूरा करते आए हैं और साथ में जंगल को मेंटेन भी करते आए हैं। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मेथड्स वो अपनाते थे, और उनके मेथड्स को समझ करके हमें अपने मेथड्स को भी बनाना चाहिए, ताकि हमको जो इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए फॉरेस्ट से वो भी हमें मिलता रहे और साथ के साथ फॉरेस्ट को नुकसान भी ना हो, और लोकल पीपल को जो चाहिए वो भी उन्हें मिलता रहे, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो पाए हमारे फॉरेस्ट का या फिर फॉरेस्ट में रहने वाले जीवों का। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा कि किन किन लोगों की जिम्मेदारी है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनकी जो प्रोड्यूस को प्राप्त करने का उनका मकसद है वो अलग अलग है। अगर आप बात करें लोकल पीपल की, तो लोकल पीपल का ये मकसद होता है कि जो चीजें उनको चाहिए वो उनको मिलती रहे, साथ में वो फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी जाए, फैक्ट्री वालों की बात की जाए, तो उनका कोई ऐसा गोल नहीं होता, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि फॉरेस्ट को वो कंजर्व करें, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रिवेन्यू जनरेट करना चाहता है, किसी न किसी तरीके से फॉरेस्ट से वो रिवेन्यू जनरेट करना चाहता है। अगर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के बारे में बात करें, तो उनका ये मकसद रहता है तो कि किसी तरीके से वो अपने फॉरेस्ट को रक्षा कर पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्वायरमेंट को अगर साफ रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फॉरेस्ट को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग मकसद है इन्वायरमेंट के बारे में या फिर फॉरेस्ट की रखवाली के बारे में। फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत कम रेट में मिलती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, पैसे चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और इसके लिए जो भी फॉरेस्ट से मिल रही प्रोडक्ट्स हैं उनको वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत कम दाम पर दे देते हैं और लोकल पीपल को मना कर देते हैं कि तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके का एग्जाम्पल देखा जाता है चिपको आंदोलन में, इसको हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहते हैं। चिपको आंदोलन में ये देखा गया कि गढ़वाल नाम की एक जगह है, गढ़वाल में एक विलेज है रेनी, तो गढ़वाल में ये देखा गया कि जो लोकल लोग रहते थे, जो गांव के लोग रहते थे, वो काफी समय से हिमालयाज में गढ़वाल के एरिया में जंगलों में लकड़ियां काटते थे और लकड़ियां के जो ब्रांचेस होते हैं उनको कट करते थे, बेसिकली पूरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि फॉरेस्ट से उन्हें फायदा हो रहा है, तो उन्हें फॉरेस्ट को उनका फॉरेस्ट का ख्याल भी रखना है। लेकिन ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरे फॉरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट का सारा कंट्रोल उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में चला गया। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने विलेजर्स को मना कर दिया कि आप लोग इस फॉरेस्ट में से कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। एक दिन जब गांव के सभी जो मेन थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, औरतें थी सिर्फ विलेज में, उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर के आदमी आए, कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग थे वो आए और उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ऐसे में जो औरतें थी उन्होंने क्या किया, वो भाग करके आई और उन्होंने जितने भी पेड़ थे उन सभी को गले से लगा लिया और कहा कि अगर आप इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो उसके पहले आप हमारी गर्दनों को काट दो। इस बात पर जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग थे जो पेड़ काटने आए थे वो बहुत डर गए, क्योंकि वहां काफी मीडिया वगैरह आ गई, न्यूज़पेपर्स में न्यूज छपने लग गई, तो कॉन्ट्रैक्टर से अपने लोगों को हटा दिया। इस वजह से वहां के जंगल के जो ट्रीज थे वो सारे बच गए। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट में लोगों ने गले से लगा करके पेड़ों को अपनी जान की परवाह ना करते हुए फॉरेस्ट की ट्रीज की रक्षा की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके का कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटवीन लोकल पीपल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट भी फॉरेस्ट की चीजों को यूज करना चाहते हैं, लोकल पीपल भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पेड़ों को यूज करना चाहते हैं तो वो जड़ से उखाड़ देते हैं पेड़ों को, वो कुछ इस तरीके से कट करते हैं कि पूरा का पूरा वुड, वो मैक्सिमम वुड यूज कर पाए। लेकिन अगर लोकल पीपल यूज करते हैं तो वो पहले ब्रांचेस कट करते हैं या फिर लीव्स कट करते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें बाद में भी उसी पेड़ को यूज करना है। तो ये अंतर है, दोनों की सोच में अंतर है। तो इस सोच में अंतर से फॉरेस्ट को जो नुकसान पहुंचने वाला है वो भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। लोकल पीपल अगर यूज करेंगे तो उससे कम नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर फैक्ट्री वाले इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करेंगे तो उससे फॉरेस्ट को हाई स्केल का नुकसान पहुंचता है। इस बात को समझने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी समझदारी दिखाई और इन्होंने भी समझा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक योगदान देना पड़ेगा और उन्होंने सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सारा का सारा कंट्रोल देना एक गलत तरीका है। और इसीलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1972 में वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी गलतियों को समझा और इन्होंने समझा कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट की रखवाली में बहुत ज्यादा आवश्यक है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहां पर साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट बंगाल के साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में साल फॉरेस्ट होते हैं। ट्रेडिशनली जो लोग वहां पर रहते थे, लोकल पीपल जो रहते थे, साल फॉरेस्ट की चीजों को यूज भी करते थे, साथ में साल फॉरेस्ट की रखवाली भी करते थे। लेकिन काफी समय बाद जब जैसे जैसे कंट्रोल सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आया, वैसे वैसे कम्प्लीटली जो लोकल पीपल थे उन लोगों को कम्प्लीटली बिल्कुल मना कर दिया गया कि वो फॉरेस्ट में कदम तक नहीं रखेंगे, उनको कम्प्लीटली एलिनेट कर दिया गया। इसका मतलब है उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया, फॉरेस्ट को यूज करने से उनको बिल्कुल मना कर दिया गया। इससे ये देखा गया कि धीरे धीरे बहुत झगड़े होने लगे बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल पीपल, और इसके साथ साथ में नक्सलाइट मूवमेंट भी बहुत वहां पर बढ़ गया। नक्सलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, इन लोगों के पास हथियार होते हैं और ये हथियार से लड़ते हैं, तो इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की भी जाने जाने लगी, साथ में जो नक्सलाइट्स थे वो भी जब झगड़े होते थे तो उनकी भी डेथ होती थी। तो धीरे धीरे करके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे उनमें से एक सबसे मेन ऑफिशियल जिनका नाम था AK बैनर्जी, ये सीनियर ऑफिसर थे, तो इन्होंने कहा कि अब हमें कुछ ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पीपल इनके बीच में एक समझौता करवाना पड़ेगा कि दोनों लोग मिल करके फॉरेस्ट की रखवाली करें। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आराबारी फॉरेस्ट जो था इसके अंदर AK बैनर्जी ने कहा कि जो लोकल लोग हैं उनको 1272 हेक्टेयर का जो एरिया है वो उनके कंट्रोल में दिया जाएगा, और इसमें जो लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो साल फॉरेस्ट में से कम जो भी 25% हार्वेस्ट आएगा उसको वो ले सकते हैं। साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उनको दी जाएगी, विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट भी दी गई, और उसके साथ में सिल्वी कल्चर भी वो कर पाए, हार्वेस्टिंग भी कर पाए, और जो चारा वगैरह आता था जंगल से उसको भी वो यूज करते थे, फॉडर जो कलेक्ट होता था या फिर जो फ्यूल वुड था, जो सूखी लकड़ियां थी वो भी उनको यूज करने के लिए दे दी गई, और साथ में थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि लोकल लोग जो थे वो खुद ही अपनी खुशी से तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हम साल फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे। तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखा गया। 1983 में ये देखा गया कि वो जंगल, वो साल फॉरेस्ट जिसकी कुछ भी वर्थ नहीं थी, उसकी कुछ भी ऐसी कीमत ही नहीं थी, बिल्कुल बिना किसी कीमत का था, लेकिन लोकल लोगों ने जब उसकी रक्षा की, रखवाली की और उसकी देखभाल की, तो वही फॉरेस्ट कम से कम उसकी वर्थ और उसकी वैल्यू जो बताई गई वो 12.5 करोड़ की बताई गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोकल पीपल सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को, किसी न किसी तरीके से वो मदद भी करते हैं फॉरेस्ट की डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट की मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ आ गया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। आपने जो आज पढ़ा है आपको उसे रिवाइज कर लेना है, कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।